समय सार परमागम के मंगलाचरण के तीसरे कलश पर चर्चा चल रही है कि जिसमें ये लिखा है कि यद्यपि मैं शुद्ध चैतन्य मात्र तत्व हूं फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। एक श्वास में दो बात करते हैं आचार्य, पंक्ति पढ़ दो, पर परिणति हेतु मोह नाम नोनु भावाद अवरत मनोभाव्या व्याप्ति कर्माश माताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु। कि मैं शुद्ध चिन्ह छंद पढ़ू हिंदी का तो समझ में आएगा, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं फिर भी परिणति मलन हुई है मोहोदय से। ये जो मालिनी छंद है ये चार पंक्तियों में छपा है, वास्तव में दो पंक्ति का छंद है। तो एक ही पंक्ति में मतलब ऊपर की पंक्ति में ये कह रहे हैं और नीचे की पंक्ति में ये कह रहे हैं, परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। अब ये समझ लीजिएगा, इसमें यदि हम अपनी जिद पर अड़ जाएं तो तीनों भाव परस्पर विरुद्ध दिखते हैं जबरदस्त। एक तो है कि मैं शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, मैं रंच मात्र भी मेरे में विकार नहीं है और फिर भी परिणति मलिन हुई है दोनों मात्र में। तो यदि मैं पूरा एकांत से संपूर्णतः किसी भी अपेक्षा अपर पक्ष नहीं है तो इसी कलश में उन्होंने उल्लेख कैसे किया कि वो परिणति मेरी, वो परिणति भी देखो संस्कृत में पढ़ा है मम है ना, पर परिणति हेतु मोह नाम नो अनुभावाद अवृति मनोभाव्या व्याप्ति कलमाशाया मम परम विशुद्ध मम परिणति ऐसी हो रही है मेरी परिणति। तो परिणति को मेरी करे ऐसे नहीं कि पर अलग कोई एरावत विंध्याचल हिमाचल जैसा पड़ा है अलग अलग है ना। दोनों अपेक्षाएं एक ही कलश में एक साथ व्यक्त कर रहे हैं, मुझ में कुछ नहीं हुआ है और थोड़ा हो गया है। क्या दीदी भाई देखो, बहुत मार्मिक बात है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर साल ये होता है कि पूरा चेकअप करते हैं ऊपर से नीचे तक और कहते हैं कि आपको कुछ नहीं है, चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये एक गोली शाम को सोने के पहले खा लिया करिए। कुछ नहीं है तो ये गोली क्यों खाऊं मैं, बोलो कि नहीं वो तो खानी पड़ेगी। कुछ नहीं है का मतलब क्या मुझे बताओ कि मैंने जो जांच की है आपके प्रोस्टेट की उसमें कैंसर तो नहीं है, ये मुझे शक था। तो उस जांच में उसके लक्षण दूर दूर तक नहीं आए हैं, मैंने सब तरह से देख लिया है, नीचे ऊपर खून की जांच करके और अंदर से डाल करके ऊपर से देख करके और सोनोग्राफी करके और मोनोग्राफी करके जो जो होती हैं सब करके मैंने देख लिया है कि वो नहीं है, इसलिए कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा अवरोध है, इसे पेशाब धीमी रफ्तार से आता है ना, तो उसके लिए एक गोली खाओगे तो वो निर्मल तरीके से निकल जाएगा। अब बोलिए, अब कुछ नहीं है और एक कुछ है, इन दोनों में आपको विरोध लगता है? कुछ माने ऐसा कोई महत वो नहीं हो गई है मरी, उसका नाम कुछ कुछ उसका नाम है, इसका नाम कुछ नहीं है। जो है वो त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा में कुछ नहीं है, वो इतनी महान बात है कि उसकी तुलना जगत में कोई दूसरे से नहीं हो सकती है। और नीचे जो कुछ बता रहे ये बहुत मामूली बात है, कहां वो त्रिकाली में और कहां जो एक समय की पर्याय में जो अगले समय में स्वयं ही नष्ट होने वाली है, ख्याल है ना। कहां तो वो कहते मेरी परिणति उसके लिए मैली हुई है। अब मैली हुई है तो फिर अपने गुरुदेव जैसे महापुरुष ने गुणस्थान पर पाती से निकाला कि मैली का क्या अर्थ है कि जब वे झट में साधना गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले भावलिंगी संत थे तो तीन कसाय के सद्भाव रूप अशुद्धता तो हो ही नहीं सकती है। तो यहां जो भी संजुलन कसाय का उदय संबंधी और नौ कसायों के उदय संबंधी जो विकार है सिर्फ उसको यहां पर मलिनता कह रहे हैं। गुरुदेव के प्रचनों में पढ़ना, इसमें भी किताब में लिखा है कि वो जो परिणति है वो कोई बहुत बड़ी मलिनता नहीं है। कौन सी मलिनता है सुशील जी? कि मुझे ये समय सार की टीका लिखने का भाव आ गया है भाई। ए, ए, क्या कह रहे न मुझे शादी का भाव आया है, न गिरी माँ बहन को छेड़ने का भाव आया है, न धंधा पानी करने का भाव आया है, न कोई पहाड़ी पे तीर्थ बनाने का भाव आया है, कुछ नहीं आया है, ख्याल में है ना। लेकिन तुम्हारी परिणति मैली कैसे हो गई कि ये टीका करने का जो राग आ गया ना मुझे, क्यों? जगत के जीवों के कल्याण की भावना से सही है, अपने कल्याण की भावना से सही, तो ये जो विकल्प की तरंग खड़ी हो गई ना, ये अशुद्धि है। इतनी ही अशुद्धि को अशुद्धि स्वीकार कर रहे हैं। हम क्या बात करते हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया काम है, इसके लिए तो अभिनंदन किया जाना चाहिए उनका, क्यों? और हम करते भी हैं। देखो हम और आचार्यों को उनसे भी गहरी वाले होंगे, साधना वाले हुए ही है ना, मोक्ष गए हैं जो, तो उन्हें हम बिल्कुल याद नहीं करते हैं, इन्हें इतना याद करते हैं। तो वो तो उनकी वो जो अपराध जिसे वो कह रहे खुद उसकी ही प्रशंसा करते हैं ना, हम क्या करते हैं, उसी की गीत गाते हैं ना, दूसरे का क्यों नहीं गाते हैं। तो वो कहते मेरा यही मलिनता है, और ये मलिनता फिर देखिए फिर क्या है परस्पर विरुद्ध बात, ये टीका करने से ही शुद्ध ठीक हो जाएगी। अरे भारे वा, यही तो मलिनता है कि मेरा भाव आया है और यही कैसे ठीक हो जाएगी उसी टीका करने से। मतलब सीधी सच्ची बात है कि टीका करने का विकल्प आया है और टीका हो जाएगी तो विकल्प नष्ट हो जाएगा। समझने बहुत सीधा सच्चा अर्थ कर रहा हूं, अभी गहरा भी करूंगा, चिंतन घबराना नहीं, क्यों? तो ये विकल्प मेरे को आया है, ख्याल में है ना, कि मैं आपसे ये बात कहूं और बस मेरा वो विकल्प कह दिया और आपने सुन लिया गंभीरता से, तो हम हमारा विकल्प पूरा हो गया, झगड़ा खत्म, वो बात खत्म हो गई। तो जब मैं इसी टीका लिख दूंगा अथवा मैं लिखने का जो भाव है वो समाप्त हो जाएगा। एक तो यह है कि इस टीका की विशुद्धि से हो जाएगी ऊपर से अर्थ। अब दूसरी वो कहते हैं कि टीका के भाव लिखने के भाव से उसी को तो मलिनता कहते हैं और उसी भाव से वो कैसे नष्ट हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि वो जो मलिनता है जो नीचे की मलिनता होती परस्त्री आदि के विकल संबंधी, तो वो स्वस्त्री सीमा का व्रत लेने से नष्ट हो जाती। समझना, जो पाप रूप मलिनता होती तो शुभ भाव रूप मलिनता से वो साफ हो जाती, भले थोड़ी सी ये मलिनता और नहीं लग जाती, ख्याल नहीं ना। लेकिन ये तो शुभ भाव ही रूप मलिनता है, क्यों? तब ये खून का धब्बा खून से कैसे साफ होगा? खून का लगा हो धब्बा और लाल कलर का पानी हो, पानी में थोड़ा सा लाल कलर हो, ऐसा हो कुएं का पानी मिट्टी है उसमें बरसाती पानी में, तो उस मिट्टी वाले पानी से धोएंगे तो खून का धब्बा तो धुल जाएगा लेकिन मिट्टी का धब्बा उसमें लग जाएगा। नरेंद्र भाई, लेकिन मिट्टी के धब्बे को ही धोना हो तो मिट्टी से वो कैसे धुलेगा, ख्याल में ना। तो वो कहते हैं कि ये बात गुरुदेव फरमा रहे, गुरुदेव ने अर्थ निकाला है जो मैं बता रहा हूं, आप पढ़ लेना सबने देख करके कि उस वक्त जो मेरे तकाली ध्रुव भगवान आत्मा में का जोर है, जोर का माने क्या कि मैंने जब सम्मेलन दर्शन प्राप्त किया था तब उसमें मेरा अपनापन स्थापित हो गया था और वो आज तक कायम है। एक तो ये बात है श्रद्धा के लेवल पर वो चीज प्रकट पर्याय में आज तक बड़ी दृढ़ता से कायम है। दूसरा, मैंने उस दिन ये जान लिया था कि ये मैं हूं, तो ऐसे इसका नाम है सम्यक ज्ञान। तो ये सम्यक ज्ञान की किरण भी बिल्कुल जागृत अवस्था में है, वो सुप्त अवस्था में नहीं है। मैं उपयोग लब्धि प्रवृत्ति ये शब्दों का प्रयोग जानबूझ के नहीं करना चाहता हूं, तो उसमें पंडित लोग बहुत अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, विवाद में पड़ जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं देवेंद्र कुमार जी, कि वो जो मैंने अपनापन स्थापित किया था, ज्ञान में जाना था, वो मेरे प्रगत पर्याय में के ज्ञान में अभी भी वैसा ही वैसा विद्यमान है। उसमें कोई चेंज कोई परिवर्तन मेरा नहीं हुआ, मेरे उन विकल्प की तरंग खड़ी नहीं हुई कि ऐसा है कि नहीं है, एक तरह बिता करके तो देख लो। देखो मैं एक खतरनाक बात कहता हूं, अरे किसी मिनिस्टर पर कोई आरोप लगाया गया है ना, तो उससे कहते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, अब सीबीआई का सामना करें, सीबीआई की जांच हो जाएगी और तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो आप ऑब्जेक्शन क्यों करते हैं? ऑब्जेक्शन तो ये मालूम पड़ता है कि आपके दांत में काला है कुछ खाने में ही ना। तो वो ये कहते हैं कि कोई आदमी तुम्हारी मां के चरित्र पर कलंक लगाए और आप ऑब्जेक्शन करें, तो वो कहेंगे एक जांच बैठा देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो आरोप लगाने वाले से कहता है वो क्या कि मेरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, यदि मैं ईमानदार हूं तो ईमानदारी प्रकट हो जाएगी, तो मैंने भी तेरे पे आरोप लगाया कि तेरी मां व्यभिचारिणी है और तू एक जांच बैठा ले तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तेरी मां यदि व्यभिचारिणी नहीं होगी तो सिद्ध हो जाएगी, तो तेरा कलंक भी मिट जाएगा। क्या भक्त हो तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे भाई किसी की जांच बैठाना ही इसमें 90% कलंक लग जाता है और फिर वो 10-5 साल बाद जब चाहे वो छूट जाए और चाहे वो है ना, तो तुम्हें अपनी मां पर ये बैठाने के लिए इतने भड़कते क्यों हो? दूध का दूध और पानी का पानी होगा ना, कोई प्रूफ मिलेगा ही नहीं ना। बोलो उत्तम देव जी, तो ये तर्क कितना हल्का है, समझ रहे हैं? ये तर्क कितना हल्का है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो ज्ञान पर्याय में सम्यक ज्ञानपना तभी उसका नाम पड़ा था जब उसमें वो आत्मा ज्ञान का गेय बन गया था और उस ज्ञान ने ये जान लिया था कि ये मैं हूं, और एक क्षण को आज तक मेरे में से वो नहीं हुआ। सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी तो क्या कहा था कि हे अग्नि माता, यदि मैंने पति के रूप में रामचंद्र के अलावा किसी को भी रंच मात्र स्थान दिया हो, किसी दूसरे को के साथ जो पति के साथ संबंध होते हैं वैसे संबंध स्थापित करने का विकल्प भी मेरे चित्त में आया हो, तो तू मुझे जला देना। इसका मतलब एक वो अखंडता जो चित्त में बनी है वो सीता का सील है, इसलिए अग्नि का जल नहीं बनाया। क्यों? अब मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। क्यों जी? आप भी अपनी सीता से कह दो कि तू अग्नि परीक्षा दे, तब मानूंगा मैं सही। क्या सीता जी ने दी थी ना, उस पर भी झूठा आरोप लगा था और तेरे पे भी एरा गहरा नच्छू खेरा कोई भी धोबी नाई क्यों और आरोप लगाने में तैयार है और तुम अग्नि परीक्षा दे रहे। बोलो कितनी माताएं बहनें तैयार हैं और कितने घर वाले अपनी माताओं बहनों को आग में झोंकने के लिए तैयार हैं? कोई भी नहीं, धोबी कहीं से भी कुछ आरोप लगा देगा है? मैं ये भी कह सकता हूं कि आप बहुत बेईमानी करते हैं, कि साहब नहीं करते, सिद्ध करो कि अग्नि परीक्षा दो, अग्नि में कूद जाओ, यदि नहीं करते होगे तो बच जाओगे और करते होगे तो जल जाओगे। कौन कौन आदमी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है? तो पश्चाताप की किताब आपको बांटी है और आप लोग पढ़ेंगे उसे, और हमें सब कभी मौका मिलेगा तो हम आपको उसे पूरा पढ़ के सुनाएंगे भी, ख्याल में है ना। लेकिन आप ये मोटा सा तर्क हमारे ख्याल में नहीं आता इस जगत को, तो एक झटके में ऐसा बोल देता है। तो ज्ञान में से एक समय को मैं त्रिकाली ध्रुव हूं और अन्य कुछ नहीं हूं, राग द्वेष रूप में नहीं हूं, मैं संबंध ज्ञान तादरूप पर्याय में नहीं हूं, ये श्रद्धा उसकी ऐसी अडग रही है। अब समझना, अब ऐसी श्रद्धा जब अडग है उसी काल में वो ये भी स्वीकार कर सकता है, कह सकता है कि मोहोदय से परिणति मेरी मेली हुई है। तो वो जो शुद्धता जो शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं वो खंडित हो गई, इसने क्या उसको कमजोर कर दिया? क्यों, इस तत्व ज्ञान ने उस तत्व ज्ञान को कमजोर किया क्या प्रसन्न भाई? तो जो हमारी ये धारणा है कि हमें यदि पर्याय की मलिनता को जिस अपेक्षा है उस अपेक्षा भी स्वीकार करेंगे तो जैसे हमने उस शुद्ध स्वभाव को अस्वीकार कर दिया, ऐसा नहीं है। आचार्य एक सांस में दो बात कह रहे कि मैं तो शुद्ध चेतन मात्र मूर्ति हूं और मेरे में कुछ भी नहीं हुआ, बेकार का मेरे में प्रवेश भी नहीं हुआ। अरे बेकार तो क्या, निर्मल पर्याय का भी मेरे में प्रवेश नहीं है, है ना। तुम चाहो तो ये मेरे से शयन करवा लो पक्का, लेकिन फिर भी ये फिर भी है ना जैन धर्म में टोनल जी में किंतु है क्या नहीं है? क्यों फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। अब मुंह के उदय से माने वो टीका लिखने का भाव, वो मुंह का उदय वो बोलते हैं। अब वो टीका करने से वो टीका लिखने का भाव करे खत्म हो जाएगा। और दूसरा अर्थ ये है कि भैया मेरे टीका करने का जो भाव है वो कोई है, सही बात है, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज तो क्या है कि अंदर में मैं त्रिकाली ध्रुव रूप से विद्यमान मौजूद हूं और फिर उसमें मेरा अपनापन मौजूद है, मेरा ज्ञान ये जान रहा है कि ये मैं हूं और मेरी श्रद्धा ये जान रही है कि ये मैं हूं, समझे ना। और तत्संबंधी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संबंधी राग भी मेरे में नहीं है। अब इतना बड़ा वो पड़ा हुआ है क्या जबरदस्त कारण, अब उसमें से संतुलन संबंधी इतना सा राग है और मैंने स्वीकार कर लिया तो ये सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। वो प्रगत ज्ञान में विद्यमान है, मैं ये कहना चाहता हूं। हमको क्या लगता है कि ऐसा हम बोलेंगे जानेंगे मानेंगे तो जैसे वो हमारी संपत्ति निकल जाएगी हमारे हाथ में से? नहीं निकलती है भाई। जो बात मैं कहना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि आप लोग उसे बहुत गंभीरता से सुन रहे होंगे और गहराई से उस पर मंथन करेंगे कि क्या है, नहीं ना। अब देखिए, इसलिए मैंने लिखा है सब गुरुदेव के प्रवचन पढ़े जितने होंगे, 50 होंगे पेज के तो 50 पेज के, 100 पेज के तो 30 होंगे, 3 दफे पढ़ करके ये सब लिखा है मैंने, ख्याल में आई ना आपको। इसलिए कहीं ऐसी बात आओगे आए तो मेरे को बताना ये गुरुदेव में मिलता कि नहीं। उक्त छंद में प्रकारांतर से पेज नंबर निकालो आपका 5 नंबर, आचार्य देव ने समय सार की व्याख्या लिखने का संकल्प भी व्यक्त किया है और प्रतिज्ञा भी की है। अब डबल डबल कि मैं लिख रहा हूं, मैं प्रतिज्ञा कर, ये प्रतिज्ञा वाक्य माना जाता है, आपको प्रतिज्ञा की है और कह रहे कि नहीं मैं बेकार है और मैं तो इसे नष्ट करना चाहता हूं। और देखे संकल्प भी लिया है और प्रतिज्ञा की है। अब क्यों जी, इसको प्रतिज्ञा वाक्य बोलते हैं क्या? नहीं, भुगत समय पा होड़े मैंने मोसुए की बेली भणियम ये है ना प्रतिज्ञा वाक्य, ये सब काब उसके कमने पड़ोगे अब न्याय शास्त्र वगैरह को, तो इनको प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं। मंगलाचरण के साथ तत्काल प्रतिज्ञा वाक्य लिखना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तो उन्हें प्रतिज्ञा करी, समझे ना, अभी भी उसने प्रतिज्ञा करी, अरे इतनी दृढ़ता से करी, अरे तू इसका करता धरता है ही नहीं और उसकी प्रतिज्ञा कर रहा है, मैं करूंगा, कर सकता ही नहीं, टीका लिख सकता है, अपन कहें टीका की लिख ही सकते हैं, जड़ की क्रिया है लिख सकते हैं, और स्वभाव भी उनके हाथ में है, क्रमबद्ध पर्याय में होगा तो आएगा नहीं तो नहीं आएगा, एक क्षण की बात को तो पलट नहीं सकते हैं। उत्तमचंद जी का बहुत तर्क मुझे बहुत अंदर से गहराई में प्रवेश कर गया है कि आप ये कहते हो कि मैं अपना तो करूं, तो मैं आप ये कहता हूं करूं तो उसे माना जाता है कि मैंने किया, कि यदि मैं नहीं करता और वो नहीं होता, क्यों? तो मैं कहता हूं मैं अपने भावों का करता हूं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप करता मत बनो और फिर भावों को होने से रोक दो, माने वो उतने समय द्रव्य का परिणमन रुक जाएगा, नहीं नहीं जैसे कहना चाहते वैसे नहीं होंगे, दूसरे तरीके हो जाएंगे, सवाल हमारा कैसे होंगे वो थोड़ी है, उसका परिणमन होगा कि नहीं, और यदि वो होगा तो उसका कर्ता मैं कैसे हो सकता हूं। यदि मैं ये समझता हूं कि सब मेरे से ही सारा जगह चल रहा है, हिंदुस्तान चल रहा है, तो थोड़ी देर को मैं अलग हो जाऊं और फिर देखू हिंदुस्तान चलता कि नहीं चलता है, क्यों? तो मैं चौड़ा और बजाज सकड़ा का भाव खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें वो देखने की दृष्टि ही नहीं है, आदत ही नहीं है, इससे सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। देखो मोहोदय के निमित्त से कुछ मलिनता है, स्वीकार कर रहे हैं ना, वह भी समय सार की एक व्याख्या से समाप्त हो जाए, क्योंकि व्याख्या के काल में मेरा जोर तो त्रिकाली स्वभाव पर ही रहना है, ये गुरुदेव की जो वाणी का भाव है कि वो तो कहते हो जाएगी समाप्त तो हो जाए, मैं तो चाहता हूं, मेरी भावना है हो जाएगी, मैं कोई गारंटी की बात नहीं करता हूं। आचार्य देव हृदय में, आचार्य देव के हृदय में कोई पाव भाव रूप मलिनता तो है नहीं, ये टीका लिखने उपदेश देने आदि स्वभाव रूप मलिनता ही है, जिसे हम लोगों ने अभिनंदन ही मान लिया है, और इसी बात के लिए हम अभिनंदन देते हैं और हम बड़े गौरव के साथ हैं? लेते हैं, घरों में दीवार पर लगाते हैं, क्यों है? और वे उसका नाश ही चाहते हैं, तथा वे तो भी अच्छी तरह जानते हैं कि टीका करने के भाव से, टीका करने के भाव रूप मलिनता समाप्त नहीं होगी, पर वे यह भी जानते हैं कि अंतर में तीन कसाय के अभाव रूप निर्मलता विद्यमान है, मिथ्यात्व के अभाव रूप अभाव से परमे से अपनापन टूट गया है और अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में ही अपनापन आ गया है, है अभी उसके बल से आत्मा की रुचि की तीव्रता से निश्चित ही इस विकल्प का नाश होगा और उपयोग सिद्धोपयोग में चला जाएगा। कल ही परसों की घटना है, मेरे पास एक फोन आया मेरे एक मित्र का, काफी संपन्न है, तो उन्होंने सुनाया बड़े हंसते हंसते कि भी मैंने अभी शेयर में 15 लाख गमाए, हंसते तक 15 लाख गमाए, लेकिन मेरे दुख इस बात का है कि मेरे ही साथ दूसरे ने भी ले लिए थे वो शेयर और उसने कितने गमाए होंगे उसका मुझे दुख हो रहा है, मतलब तुम्हारे कमाए का नहीं हो रहा तुम्हें, अब अपने तो क्या क्या फर्क पड़ता है, करोड़ों हैं अरबों हैं, 15 लाख गए तो क्या, नहीं गए थे, लेकिन उसने तो सारी पूंजी लगा दी थी, बाजार से उधार लेके लगा दिया था, क्यों उसका क्या हुआ होगा, समझ रहे हैं ना, क्या गजब के आदमी यार तुम, बोले हम तो आटे में नमक लगाते हैं, खेलते हैं खेल जैसा, आ गए तो 50 आ जाते, 15 लाख चले गए तो 15 लाख चले गए, हल नहीं ना, आते तो हंसते रहते हैं और बड़ा दान भी दे रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं 15 लाख गए हैं, अब उस उतारे के धंधा मंडा उखड़ गए होंगे उसके संकल्प विकल्प परिणाम कैसे हो रहे होंगे। आचार्य कहते हैं मेरे को इतना सा विकल्प है, उतने में तो मेरी ये हालत हो रही। अब जिनके विकल्पों का ढेर लगा हुआ है कर्तृत्व का है, जैसे समझते हैं सारा मेरे ही से चल रहा है, मैंने दी, ऐसा नहीं करूंगा तो ये नहीं होता, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये क्या बताऊं मैं। बात आपको बहुत कड़वी लगेगी लेकिन मैं सच्ची बात आपको बोल रहा हूं कि यहां पर एक बहुत आतंकवाद का समय आया था, देश में भी, हमारे जयपुर में भी, और देश के विरुद्ध भी और अपने विरुद्ध भी। तो जब रोजीना ऐसी आशंका होती थी कि आज लोग आएंगे और ये हमारी मूर्तियां तोड़ देंगे ऊपर जो लगी है, तो चर्चा होती थी, बहुत आतंक का वातावरण था। तो विद्यार्थियों में खूब जोश है नई उम्र की, तो सब वहां पर लाठी लेके और ड्यूटी पे खड़े रहते और देखते और ये करते, मतलब भजन गाते रहते, ऐसा ऐसा करते थे। मैंने आया कहीं बाहर से, मैं ये क्या हो रहा है, कैसा दान की बाजी चली जाएगी, लेकिन हम मूर्ति को हाथ नहीं लगाने देंगे किसी को। क्या सही घटना है, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी गद्दी पे बैठ के कह रहा हूँ और टेप हो जा रही है, इसमें शायद मेरे को कभी बहुत तकलीफ भी उठानी पड़ सकती है, लेकिन सुनो वो विचार लोगों तक पहुंचे मैं चाहता हूं। मैं जाओ अपने कमरे में जाओ पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है यहां पर, हमारे जो चौकीदार अच्छे ना चाहे बंदूक वाले वो देखेंगे सब, तुम अपनी पढ़ाई करो। नहीं साहब ऐसा हो जाएगा तो हम जानकी भाई, क्या कहा तूने जानकी भाई, तेरे मां बाप ने हमें तेरी जान की बाजी लगाने के लिए यहां नहीं भेजा है, पढ़ाकर विद्वान बनकर वापस लेने के लिए हमें भेजा है। नहीं सर मूर्ति, देखो मूर्ति को कुछ होने वाला नहीं है, होगा तो ये बचा लेंगे बंदूक वाले चौकीदार, और यदि ये नहीं बचा पाएंगे तो तुम्हारी लाठी कुछ काम आने वाली नहीं है, समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन ऐसे में तुम एक आज चले गए तो मैं तुम्हारे मां बाप को क्या जवाब दूंगा, मूर्ति चली गई तो मूर्ति चली गई तो हम एक की जगह तीन प्रतिष्ठा कराएंगे, यदि भाई से कहेंगे अच्छी मूर्ति लाओ पंचगणना करा के सात बार से तीन विराजमान कर देंगे, वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन तेरे मां बाप के लिए तुझे कहां से लाएंगे। अब लोगों को ये लगता है ये कैसा पंडित है, ये कहता है मूर्ति तू खंडित हो जाए तो हो जान दो। बोलो, अब मैं आपसे बोलता हूं, मैं आप सब छाती पे हाथ रख के यहां विचार करो दो मिनट में, तो मेरे विचार से आप सहमत होते हो कि नहीं। यहां दुष्ट लोग आए और मेरे सामने वे मूर्ति को खंडित करें और मैं पूरी ताकत से रोकूं और रोक कर मैं कहूंगा पहले तुम मुझे मार दो, मेरे हाथ पे तोड़ दो तब तुम मूर्ति को तोड़ सकते हो। क्यों मेरे भले तोड़ दो, मूर्ति को मत तोड़ो, और वे मेरे सचमुच मेरे हाथ पैर तोड़ के चले जाएं और मूर्ति को सुरक्षित छोड़ दें तो आप सबको ये स्वीकार है क्या। छाती पे हाथ रख के विचार कर, मुंह से नहीं बोलना है, है? नहीं रहा नहीं नहीं, नहीं, नहीं। तो मूर्ति तो मूर्ति और तोड़ जाए, हम दस आप रहोगे तो 10 मूर्तियां लग जाएंगी, 50 लग जाएंगी, और आप ये बात कभी नहीं करना। तो मेरे 71 वर्ष के बुद्धे को 2 साल जिंदगी होगी, उसके लिए आप इतने आकुलित होते हो, तो ये नई उम्र के बच्चे जिनका अभी पता ही नहीं है ये कितनी प्रतिभा इनमें भरी है, कितने हुकुमचंद इनमें से तैयार होंगे, तो उनको मैं दाव पे कैसे लगा सकता। ये मेरा विचार है पक्का, अब तो ये मूर्ति को तोड़ जाने तोड़ जान दो ऐसी कहेंगे, ऐसे लोग विचार करेंगे तो करेंगे, मैं क्या कर सकता हूं। जो मैं उस तथ्य का प्रतिपादन कर रहा हूं और अपने भाव को स्पष्ट कर रहा हूं, उसको समझने की ताकत तुम में नहीं है तो मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है। पर ऐसे लोग मुझे बुरा समझते भी रहे तो मुझे उसका विकल्प भी नहीं है। सज्जन लोग, भले लोग, अच्छे लोग जिस दिन मुझे बुरा मानेंगे हमें उसका उस पर चिंतन आएगा। जो बुराइयों के भंडार हैं उनको कहने से कहां जा, किस किस को रोक सकते हैं, चल नहीं ना। देखो आगे पढ़ते हैं, टीका करने के भाव से टीका करने के भाव रूप मलंता समाप्त नहीं होगी, पर वे यह भी जानते हैं कि अंतर में तीन कषाय के अभाव रूप निर्मलता जो ये पर्याय की संपत्ति, वो द्रव्य की संपत्ति तो पहले ऊपर बता दी है चिन्मात्र मूर्ति हूं, अब ये पर्याय की संपत्ति देखो। तीन कषाय के अभाव रूप निर्मलता है, मिथ्यात्व के अभाव से पर में से अपनापन टूट गया है, अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में अपनापन आ गया है और ये सदा कायम है। अभी जो बताया ना ज्ञान में श्रद्धा में आचरण में मतलब उसमें है ना परिणति में, उसके बल से आत्मा की रुचि की तीव्रता से निश्चित ही विकल्प का भी नाश होगा और उपयोग शुद्धोपयोग में चला जाएगा, इससे जाएगा। अब वो मेरे पास है, इसके विकल्प को नाश करने के लिए एक कितनी तैयारी मेरे पास है, कितनी सेना है, ख्याल में आए ना। अरे बॉर्डर पे चार आदमी थे तो क्या फर्क पड़ता है, हमारी सेना में तो 4 करोड़ है ना, क्यों? और यदि वहां पर 4 हाथ पीछे हट गए तो क्या फर्क पड़ता है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं एक आदमी मर गया तो क्या फर्क पड़ता है, फिर वो सेंसिटिव हो जाएंगे आप, क्यों? क्या वो 4 आदमी पीछे हट गए और 4 में से 4 या 2 मर गए तो उस हिंदुस्तान हार गया, क्यों? तो ऐसी थोड़ी विकल्प आ गया समय सार की टीका लिखने का, तो मेरी जो संपत्ति है पर्याय की संपत्ति की बात है, द्रव्य के स्वभाव की नहीं, वो इतनी अधिक है कि उसके सामने इसमें क्या होता है। जैसे बोले 15 लाख गए तो मुझे तो कोई असर ही नहीं पड़ा, तो जिसको 15 लाख गए उसे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इतनी संपत्ति हो तो आचार्य देव कहते मेरे को थोड़ा आ गया तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम इस होड़ में मत रहना नहीं तुम्हारे दरिया डंडा उठ जाएंगे, मकान बिक जाएगा। समझे मैं ये बात क्यों कही थी कि तुम्हारे यहां तो अपवित्रता का ढेर है और पवित्रता की अभी चिंगारी नहीं फूटी है, तुम्हारे तो कर्तृत्व के अभिमान में थोड़ा भी समझे ना उतार नहीं आया है एक क्षण भी है? हम अभी उसमें कितने चढ़े हुए हैं, मन वचन काय कृत काय तनमोदना से एकदम है ना। देखो आगे पढ़ो, बहुत अच्छा है ये सब मैंने लिखा है, करीब ये एक पेज लिखा है, ये एक पेज को कम से कम 50 पेज पढ़ के लिखा होगा, मैं थोड़ी कहता हूँ मैंने अपने मन में से लिखा कि मेरे पेट में से आया है, लेकिन वो 50 पेज आप पढ़ने नहीं जाते हैं, उतनी एकाग्रता से नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए उसे सरल भाषा में छांट के रख लिया है। दूसरे कलश में उन्होंने यह भावना व्यक्त की थी कि इस जिनवाणी का प्रवाह निरंतर चलता रहे, था ना, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतां, जिनवाणी नित्य ही प्रकाशित रहे, यह भावना तो उत्तम है पर शुद्धोपयोग रूप तो नहीं है ना। देखो जाते हैं ना लोग देते हैं जन्मदिन की बधाई, तुम जियो 1000 साल और साल में दिन हो 50,000, क्या गजब कर दिया, क्या गजब कर दिया, कितनी अच्छी भावना है। अरे भले आदमी कितनी अच्छी है पर लट्टू हो रहा है कि कितनी सच्ची है, इसका भी तो विचार कर, क्यों? क्या 1000 साल हम जीने वाले हैं और यदि जी भी जाए तो साल में 50,000 दिन होंगे, ये सभी झूठ। और इसको तो अच्छी भावना कहता है, ये झूठ की भावना भी अच्छी होती है, ये कल्पना लोक में विचरण कर रहा है, क्यों? अपन कहते हैं ना कि मुफ्त के ही लड्डू खाना तो फीके क्यों, जमीन पे ही सोना है तो पैर पसार के क्यों नहीं सोना, जब कोरा आशीर्वाद ही देना है, देना लेना तो कुछ है नहीं तो दिन में 50,000 साल में दिन क्यों, 50 लाख तो अपने बाप का क्या बिगड़ता है। ये सफेद झूठ को ये बोलते हो कि तुम्हें बहुत बढ़िया है। मेरे मित्र मेरे हम लोग पढ़ते थे, उसका स्वर्गवास हो गया है, तो डॉक्टर बिरधी चंद नाम था, तो वो एक कविता लाया कि वो जो लिख के लाया था कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार। यद्यपि वो कविता उसने नहीं बनाई थी, मैंने क्योंकि पहले भी सुनी थी देखी थी, लेकिन वो वहां से चुरा चुरू के लाया और अपना नाम ठोक के और सभा में सुना दिया। उत्तम सिंह जी, तो मैंने कहा वृद्धि चंद हमारे सहपाठी थे, एक क्लास में पढ़ते थे, कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, ये तुम्हारी भावना कभी सफल होगी है? क्यों? अरे मांग रखो तो ऐसी रखो कि जिसका कभी कोई पूर्ति करने की बात हो सकती हो। संसार सारा सुखी हो जाएगा तो मोक्ष में कौन जाएगा? ये संसार तो दुख का नाम है। तो मैंने जरा उसको ये सब समझाया, उस वक्त जब पढ़ता था तो बोले मेरी नहीं है तुम्हारे लिए, मैं तो एक अखबार में देखी थी, बहुत अच्छी लगी। तुम पंडित हो इसी अच्छी है, हमको झूठ अच्छा लगता है, ये जगह देखो तो क्यों है? देखो शुद्धोपयोग रूप तो नहीं है, पर आचार्य देव को यह मलिनता, यही मलिनता भाषित होती है, मानो उसके नाश के लिए शुद्धात्मा के जोर वाले शास्त्र की टीका लिखने का भाव होने आया है। अब कहते हैं कि भाई टीका लिखने के भाव से तो ऐसे शास्त्र का इसके क्यों लिखा? इसमें शुद्धात्मा का जोर है और शुद्धात्मा के जोर से वो मलिनता नाश होगी, तो ये शास्त्र भी शुद्धात्मा के जोर वाला है, इसलिए इससे होगी ऐसा वो कहते हैं। जो राग को बढ़ाए ऐसे शास्त्र से नहीं होगी, ख्याल में है ना? इसलिए वो कहते शुद्धात्मा के जोर वाले शास्त्र की टीका उन्होंने लिखने की है। प्रकारांतर से आचार्य देव यह भी बताना चाहते हैं कि समय सार का पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना, उसकी टीका करना, गहराई से अध्ययन करना, मनन करना, उसकी विषय वस्तु का परिचय प्राप्त करना, घोलन करना परम विशुद्धि का कारण है। क्यों? पूरा पाठ फिर पढ़ना एक दफे घर जाके। लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने क्यों यह टीका लिखी, इतनी बढ़िया टीका तो थी। तो मैं उस टीका को बढ़िया नहीं थी कैसे कह सकता हूं कि जब मैंने ही उसी से ही सब जाना है, सीखा है, ख्याल में है ना? बहुत बढ़िया है, कौन कहता नहीं है। लेकिन क्यों लिखी मैंने, तो हमने कहा कि इसकी वजह से लिखी। क्या 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 की वजह शांति? कि समय सार का पढ़ना और पढ़ाना है ना, अब आप दो ही काम करते हो ना, पढ़ते भी हो पढ़ाते भी हो, लिखना और लिखाना, उसकी टीका करना, गहराई से अध्ययन करना और मनन करना, उसकी विषय वस्तु का परिचय प्राप्त करना, घोलन करना परम विशुद्धि का कारण है। इसलिए कि अब मैं अपने परिणामों की परम विशुद्धि के लिए कोई काम करता हूं, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है? तुम तो नहीं बनता है इसलिए। तुम तो नहीं, आप भी एक लिखो, लेकिन शुरू करो तो उसमें मैं आपको पहले से ही बधाई दूंगा। अरे कंजूसो, कम से कम अच्छे काम की सराहना करना तो सीखो, कर नहीं सकते हो कुछ तो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि लोभियों तुम नहीं कर सकते हो कुछ तो भले काम की प्रशंसा करना तो सीखो, उससे भले काम को प्रोत्साहन मिलता है, और बुरे काम की निंदा करना सीखो, उससे बुरे काम दुनिया से छूटते हैं, कम होते हैं। तुम पे इतना भी नहीं होता है, इसलिए उनको लिखा है कंजूस हो, ये पैसा मैसा मत दो, कुछ नहीं करो, लेकिन ये दो शब्द अनुमोदना के बोलने में तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है? ऐसा उन्होंने लिखा है। पढ़ना, वो लोह नाम का पाठ है जो उनका निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसने ये लिखा। आचार्य अमृतचंद्र इस कलश के माध्यम से स्वयं की वर्तमान पर्याय की स्थिति का ज्ञान भी कराना चाहते हैं और जिनवाणी के अध्ययन मनन की और स्वाध्याय करने की प्रेरणा भी देना चाहते हैं। अतः मानो वे कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, तुम इसका अध्ययन करो, मनन करो, पठन पाठन करो, इसकी विषय वस्तु को दिन दिन तक पहुंचाओ, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। आत्मख्याति के मंगलाचरण के बाद अब आचार्य कुंदकुंद के समय सार की मूल गाथाएं आरंभ होती हैं। अब अपने कल से जो मूल गाथा है ना वो शुरू करेंगे। ये अमृतचंद के जो मंगलाचरण की गाथाएं समाप्त होंगी।